प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
प्रभु ख्रीस्त मेरे स्वामी मन के, प्रभु ख्रीस्त मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ, मैं भटका
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए प्रभु में आनंदित हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और उन सभी अपने नियमित श्रोताओं का भी जो निरंतर इस कार्यक्रम को सुनकर हम तक अपने पत्रों को पहुंचाते हैं, अपनी गवाहियों को देते हैं, ताकि हम सब मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएं। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम आपके जीवित और सच्चे वचन का फिर से एक बार अध्ययन कर सकें। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं, निश्चित रूप से आपका जीवित वचन हमें से प्रत्येक के हृदय में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना है अपने उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो किसी न किसी रूप में निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमारी अवस्था में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, और इतना ही नहीं अपने जीवन में संतान की आशीष का इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, प्रत्येक पर अपने अनुग्रह प्रदान करें, आज की इस घड़ी आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस समय के लिए, इस संगति के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पिछले अध्ययन में देखा दासों एवं कर्मचारियों के विषय में, परंतु अब स्वामियों और नियोजकों के विषय में भी कुछ कहा गया है। तो आइए आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ें। लिखा है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। ध्यान दीजिए, स्वामियों के विषय में कुछ कहा गया है। यदि आप मसीह में हैं और नियोजक हैं, तो आप भी एक और साधारण मनुष्य हैं। परमेश्वर मनुष्य में पक्षपात नहीं करता है। पौलुस दासों कर्मचारियों के लिए जो कहता है वह आपके लिए भी है। आप भी उसी वर्ग में हैं, क्योंकि आपका भी एक स्वामी है, मेरा भी एक स्वामी है जो स्वर्ग में है, और वह है प्रभु यीशु। यह स्वामी और श्रमिकों का मसीही संबंध है। उत्तरदायित्व पारस्परिक है। स्वामियों को अपने पद का नजायज फायदा या लाभ नहीं उठाना चाहिए। उन्हें अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना है। जी हाँ, धमकी नहीं देना है। मसीह की उपस्थिति में स्वामी और दास एक ही स्तर पर हैं। वे मसीह में भाई भाई हैं, चाहे वे कोई भी क्यों न हो। इसका एक अति उत्तम उदाहरण फिलिमोन की पत्री में हम पाते हैं, जो पौलुस के द्वारा लिखी गई है। फिलिमोन का दास उनेसिमस, जो अपने स्वामी के पास से भाग गया था और उस युग के नियमानुसार फिलिमोन को उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, अर्थात उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता था। परंतु जब उनेसिमस ने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, तब पौलुस ने उसे अपने स्वामी के पास भेज दिया और साथ में फिलिमोन के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था फिलिमोन 15:16 पद में, क्या जाने वह तुमसे कुछ दिन तक के लिए इसलिए अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। जब स्वामी और दास विश्वासी हो जाएं, तो वे भाई हैं। आप मुझसे यह न कहें कि मसीही विश्वास व्यवहारिक नहीं है। यह विश्वास व्यवहारिक है और कार्यकारी भी। एक चीनी विश्वासी ने कहा, ऐसा नहीं है कि मसीही विश्वास परख कर कम पाया गया, परंतु समस्या यह है कि उसे व्यवहार में नहीं लाया गया है। यह समस्या आज भी ज्यों की त्यों है। मेरे प्रियो, यदि मसीही विश्वास आराधनालय से निकलकर आम जनता में नहीं जाता, तो कुछ गंभीर समस्या अवश्य है। यदि प्रयोग किया जाए, तो वह मालिक कर्मचारी के संबंध में व्यवहारिक सिद्ध होकर रहेगा। आइए देखें योद्धा का बैरी। अब हम इस अध्याय के मुख्य विषय पर आते हैं। कलीसिया मसीह की एक उत्तम योद्धा है। हमने एक विश्वासी के संबंध कैसे हो इस विषय पर देखा है। परमेश्वर पहले तो उसके पारिवारिक संबंधों पर टिप्पणी करता है, इसके पश्चात घर से बाहर उसके स्वामी कर्मचारी के संबंधों के बारे में कहता है। परमेश्वर की संतान होने के कारण उसे अपने समाज के कल्याण में योगदान देना है। वह चाहे जो भी हो, उसे कुछ तो प्रकट करना है। मेरे प्रियो, अब हम योद्धा के बैरी के बारे में देखेंगे। एक युद्ध जीता जाना है। आज एक समझ में न आने वाली बात यह है कि परमेश्वर की संतान एक ऐसे युद्ध में है जो आत्मिक क्षेत्र में है। यदि सार्वजनिक स्थान में दायित्वों को निष्ठापूर्वक नहीं निभाया जाए, तो मसीही उपलब्धियों के क्षेत्र में महान आत्मिक विजय नहीं प्राप्त होगी। यह तो स्पष्ट है कि मैं रूढ़िवादी हूँ। मैं अपने विश्वास में यह मानता हूँ कि हम सहस्त्र वर्षीय राज्य में महाक्लेश से पूर्व की स्थिति और अनुग्रह के युग में विश्वास करता हूँ। मैं उन मनुष्यों से कुछ ऊब जाता हूँ, वरन परेशान हो जाता हूँ। इन विचारों पर दृढ़ विश्वास तो करते हैं, परंतु उनका जीवन अति निश्चिंता से भरा होता है और हमारे इस प्रतिष्ठित ऊंची स्थिति से सुसंगत नहीं है। हम स्वर्गीय स्थान में उपस्थित हैं। अति अद्भुत बात यह है मेरे मित्रों, हम इस पृथ्वी पर वास करते हैं और हमारे धर्म को व्यवहारिक होना है। यदि आपका जीवन प्रभु यीशु को प्रसन्न नहीं करता, तो बड़ी बड़ी मसीही सभाएं और बाइबल कक्षा में उपस्थित होना समय गंवाना है। हम में से कई लोग ऐसा करते हैं। हम मसीह क्षेत्र में प्रायः कड़वाहट, कटु आलोचना और घृणा देखते हैं, जिसके कारण मसीह के उद्देश्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसकी हानि होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी शिक्षाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। हमारे जीवन क्यों ऐसे गिरे हुए हैं? ऐसे बहुत जन हैं जो अपने मन मस्तिष्क में से रूढ़िवादी हैं, परंतु अपनी चाल में मुक्त विचारवादी हैं। ऐसा सोचना बहुत खतरनाक है कि हमें बौद्धिक ज्ञान होना आवश्यक है और हमारी शब्दावली भी ऐसी हो कि हम दिखने में तो बहुत अच्छे विश्वासी हो, परंतु हमारा विश्वासी जीवन निश्चिंतता का हो जाए। एक तरीके से देखा जाए तो यह पुती हुई कब्र के समान है। अंदर से तो हम सड़े होते हैं, लेकिन ऊपर से अच्छे लगते हैं। ऐसे जीवन से परमेश्वर घृणा करता है। वह चाहता है कि हम व्यवहारिक जीवन दिखाएं। मेरे विचार में शैतान का ध्यान केंद्र न तो क्लब है न माफिया, परंतु मेरे विचार में उसका ध्यान केंद्र रविवारीय आराधना है। वह आत्मिक क्षेत्र में काम कर रहा है और अनेक निष्क्रिय विश्वासी इससे अनभिज्ञ हैं। अनेक विश्वासी शराब की दुकानों को डरवाना चाहते हैं, जबकि बंद होना है उनका मुंह जो व्यर्थ की बातें करता है, आलोचना करता है। शैतान उस क्षेत्र में कार्य करता है जिस क्षेत्र में हम उसके हस्तक्षेप की कम से कम आशा करते हैं। वह शनिवार की रात शहर में व्यस्त नहीं रहता है। वह जल्दी सो जाता है कि सुबह सही समय पर उठकर आराधना में जाए। आत्मिक युद्ध वहां होता है जहां परमेश्वर का वचन प्रसारित किया जाता है। शैतान उस स्थान को ध्वंस कर देना चाहता है, क्योंकि वही आत्मिक युद्ध का स्थान है। कभी कभी सबसे बड़ा संकट का स्थान आपके लिए वह है जहां आप रविवारीय आराधना करते हैं। जिस रात यीशु पकड़वाया गया, उस रात यरूशलेम का सबसे बड़ा संकट का स्थान कौन सा था? क्या वह फरीसियों की संगति थी या धोखा देने वालों की बैठक थी? जी नहीं, सबसे खतरनाक स्थान था अटारी, जहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ उपस्थित था। क्यों? क्योंकि उस रात शैतान वहां था। लिखा है कि वह यहूदा में समा गया कि यीशु को धोखा दे। मेरे विचार में यहूदा और पतरस दोनों ही इस तथ्य की गवाही देंगे कि वह स्थान उस रात यरूशलेम का सबसे अधिक खतरनाक स्थान था। अतः हमें यह समझना है कि युद्ध कहां चल रहा है। आपको स्मरण होगा कि इफिसियों की पत्री का अध्ययन आरंभ करते समय मैंने कहा था कि हम इस पत्री की तुलना पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक से कर सकते हैं। यहोशू इसराइल के वंशजों को यर्दन पार कनान देश में लाया और वहां उनके बैरी थे जिनसे उन्हें युद्ध करना था और उन पर विजयी होना था। यर्दन नदी न तो हमारी मृत्यु का न ही प्रतिज्ञा का देश स्वर्ग के प्रतीक हैं। वे प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रतीक हैं, और हम उसके द्वारा जंगल से कनान में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर की संतान को आज कनान में वास करना है। स्मरण रखें कि कनान स्वर्ग का प्रतीक नहीं है, क्योंकि कनान में बैरी थे और युद्ध करने की आवश्यकता पड़ती थी। आप और मैं विश्वासी जन योद्धा हैं। योद्धा के बैरियों को पहचानना है और युद्ध हमारे सामने है। प्रतिज्ञा के देश में यहोशू के समक्ष तीन मुख्य बैरी थे। पहला था उनके मार्ग का बाधक यरीहो नगर, जो आज संसार का प्रतीक है। यहोशू के लिए जो यरीहो था वही आज हमारे लिए संसार है। यहोशू से परमेश्वर ने कहा था वह युद्ध न करे, परंतु यरीहो का चक्कर काटे। हम संसार से युद्ध करके उसे जीत नहीं सकते, ऐसा करना हमारी चूक होगी। पहला योना के पत्री 5 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मेरे मित्रों, संसार पर विजय पाने की एक मात्र विधि है हमारा विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा। फिर पहला योहन्ना के पत्र 2:15 में वह कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार की वस्तुएं नाशमान हैं। परमेश्वर की संतान को उनसे लगाव नहीं रखना है। इस संसार में हमारा अनुभव कनान का अनुभव होना चाहिए। मेरे प्रियो, यहोशु का दूसरा वैरी था ऐ नगर, जो देह का प्रतीक है। यहोशु ने सोचा कि उस छोटे नगर को जीत लेना कठिन नहीं होगा, अतः उसने योद्धाओं की एक छोटी टुकड़ी ही भेजी। परिणाम यह हुआ कि उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। जब वे हार कर लौटे तब यहोशु परमेश्वर के सम्मुख मुंह के बल गिरकर गिड़गिड़ाया। यहोशु की पुस्तक 7:10-11 में परमेश्वर ने उससे कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इसराइलियों ने पाप किया है, उस पाप को परमेश्वर के सम्मुख स्मरण करके उसका त्याग करना आवश्यक था। इसके बाद ही परमेश्वर उन्हें विजय दिलाएगा। आपको और मुझे देह पर विजय पाने के लिए यही करना होगा। अधिकांश विश्वासी संसार पर जयवंत हैं। वे यरीहो का चक्कर काट रहे हैं और अपने गुण गा रहे हैं, मैं यह नहीं करता और वह नहीं करता, परंतु वे देह से हार जाते हैं। वे अपने क्रोध के वश में हैं, वे पीठ पीछे बुराई के वश में हैं। एक विश्वासी ने मुझसे कहा, ऐसा क्यों है कि मैं हर बात में झूठ बोलता हूं? देह यही तो करवाती है। मेरे मित्रों, देह हम में से अधिकांश पर जयवंत है। ऐ नगर देह का प्रतीक है। तीसरा बात है, यहोशु को गिबोनियों को स्वीकार करना पड़ा। वे चतुर थे, वे पास के पहाड़ पर रहते थे, परंतु उन्होंने ऐसे जूते और वस्त्र पहने जैसे लंबी यात्रा की हो और फफूंद लगी रोटी साथ में ले ली। यहोशु की पुस्तक 9:4-11 में लिखा है कि उन्होंने यहोशु से झूठ बोला और उससे समझौता करने की भीख मांगी। आप पढ़ सकते हैं यहोशु 9:4-11। शैतान की युक्ति ऐसी ही होती है। वह झूठों का सरदार है और अपने दूतों को ज्योति के स्वर्गदूत सा प्रकट करता है ताकि वह हमें धोखा दे। किसी ने एक पूजा पद्धति के अगुआ का वर्णन करते हुए इस प्रकार से किया, मैं उसका प्रचार सुनता हूँ, वह बड़ा ही आकर्षक और प्रभावी है और उसकी बातें मुझे उत्साह से भर देती है। परंतु दूसरा कुरिन्थियों 11:14-15 में व्यक्त पौलुस की चेतावनी स्मरण रखें। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उसके कामों के अनुसार होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या शैतान आपके घर आकर कहेगा, मैं शैतान हूं और तुझे फंसाने आया हूं? वह ऐसा कभी नहीं करता है। वह आपके घर किसी प्रचारक को भेजेगा जो आपको बाइबल की गलत शिक्षा दे या आपको ऐसी कलीसिया की ओर आकर्षित करवाएगा जहां मुक्त विचारों का बोलबाला हो। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 6:17 में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। परंतु शैतान कहता है, हमें तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, आप यहीं क्यों नहीं रहते? देखा आपने, वह कैसा चतुर है। गिबोनी शैतान के प्रतीक हैं। उन्होंने यहोशु को मूर्ख बनाया और उसने उनके साथ समझौता कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह आगे चलकर परेशानी में पड़ गया। ऐ नगर के पास पापों का पश्चाताप आवश्यक था और कठोरता से व्यवहार किया जाना था, तभी परमेश्वर ने उन्हें विजय प्रदान की। देह पर जय पाने का यही मार्ग है। अब गिबोनियों के उदाहरण के विषय में क्या कहें? यहोशू ने उनसे समझौता किया और उसके दुष्परिणाम भोगे। शैतान से हाथ मिलाकर हम भी पराजित होंगे, तो हम क्या करें? सुनिए, हम अपने सामर्थ्य में उस पर विजय नहीं हो सकते हैं। हम शैतान के तुल्य सामर्थी नहीं हैं। हमें तो उससे लड़ने के लिए भी नहीं कहा गया है। हमें कहा गया है कि परमेश्वर उससे लड़ेगा। मेरे प्रियो, आज हम इस संसार में रहते हैं, प्रतिदिन हमें शैतान का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा सचेत रहना है और परमेश्वर के उन वचनों को स्मरण करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में विजयी रहें। कैसे? परमेश्वर के वचन की संगति में रहते हुए, विश्वासियों की सही संगति में रहते हुए। मेरे प्रिय मित्र, आइए आज हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि पौलुस हमें बताता है कि हम परमेश्वर के योद्धा हैं और इस पृथ्वी पर हमें विजयी होना है, और अपने आप से नहीं, सिर्फ परमेश्वर की ओर से होकर के, क्योंकि परमेश्वर ही उससे लड़ेगा। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, अपने जीवन को स्मरण करें और कहें, प्रभु आप मेरी सहायता करें। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और आपने इस बात को जान लिया है कि आप एक योद्धा हैं और आपको एक विजयी जीवन जीना है जो मसीह यीशु के द्वारा संभव है। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। हम दिनों पर तेरी महिमा का